आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और हम पढ़ रहे थे आपकी पुस्तक क्षितिज का पाठ 14, एक कहानी यह भी, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी जी। मन्नू भंडारी जी ने इसे आत्मकथात्मक शैली में लिखा है और अपने जीवन के बारे में, जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में इसमें बताया है। ठीक है, तो जो ये कहानी है हम पढ़ चुके थे, उनके जीवन के बारे में काफी कुछ बातें हमने जान ली थी। अब हमें करने थे इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो प्रश्न अभ्यास के लिए आप लोग अपनी अपनी बुक्स के पेज नंबर 100 पे आ जाइए। ठीक है, तो आप लोग पेज नंबर 100 पे आ गए। यहाँ देखिए, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो आपको लिखना है लेखिका के जीवन पर विशेष रूप से दो लोगों का प्रभाव सबसे अधिक रहा, एक तो उनके पिता और दूसरी उनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल जी। ठीक है, तो पिता का प्रभाव ऐसा था कि उनकी वजह से लेखिका में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी हो गई थी, वो हीन भावना से ग्रसित होने लगी थी क्योंकि वो अपने ही बच्चों में तुलना करते थे। लेकिन इस हीन भावना के बावजूद पिता के ही कारण उनमें देश प्रेम की भावना, है ना, पिता के ही कारण इस देश प्रेम की भावना का उनमें जन्म हुआ। और उनकी जो शिक्षिका थी शीला अग्रवाल, उनका लेखिका पे ऐसा प्रभाव पड़ा कि जो उनका आत्मविश्वास खो गया था वो फिर से लौट आया और देश प्रेम की जिस भावना को पिताजी ने जन्म दिया था उसको, उसका विकास करना, उसको सही माहौल देना, ये सारा कार्य किया उनकी शिक्षिका ने। और इसी के फलस्वरूप लेखिका जो थी वो स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही जोश और उत्साह के साथ भाग लेती थी। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो माँ थी उनकी, उनका प्रभाव लेखिका के जीवन पर नहीं था, लेकिन लेखिका उन्हें देखकर ये सोचती थी कि मैं इन्हें अपना आदर्श नहीं बना सकती क्योंकि मैं इनकी तरह इतनी सहनशील नहीं हो सकती कि गलत बातों को भी सहती जाऊं। जैसे उनकी माँ उनके पिता का गुस्सा, बच्चों की जिद, सब कुछ सहती थी, बिना कुछ किए, बिना कुछ कहे सब करती रहती थी, वैसे ही लेखिका बोली मैं इतनी सहनशील नहीं हो सकती। ठीक है, तो समझ में आ गया, पिताजी की वजह से उनमें हीन भावना आई, आत्मविश्वास की कमी हुई, कहीं ना कहीं जो कुंठा ने जन्म लिया था उनके अंदर ये सब पिताजी की वजह से हुआ था, लेकिन देश प्रेम की भावना भी पिताजी ने ही उनके अंदर इसका बीज डाला था और उस बीज को पौधा बनाया उनकी शिक्षिका ने, उनमें आत्मविश्वास लौटाया और इसी वजह से लेखिका स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही उत्साह और जोश के साथ भाग ले पाई। अब प्रश्न दो देखिए, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। तो अब आपको बताना है कि लेखिका के पिता रसोई को भटियार खाना क्यों कहते थे। तो आप लिखेंगे लेखिका के पिता रसोई को भटियार खाना इसीलिए मानते थे क्योंकि उन्हें लगता था अगर लड़कियां रसोई के काम में लग जाएंगी तो उनकी जो क्षमता है, जो प्रतिभा है, वो नष्ट हो जाएगी, वो बस खाना बनाने तक, खाना खिलाने तक ही सीमित रह जाती हैं और उनकी जो प्रतिभा है वो उभर कर बाहर नहीं आ पाती है। यानी अपने सारे ज्ञान को, अपनी प्रतिभा को, अपनी क्षमताओं को वो वहां खड़े होके खाना बनाने के चक्कर में भट्टी में झोंक देती हैं और इसी वजह से जो उनके पिताजी थे वो रसोई को भटियार खाना मानते थे और उसे भटियार खाना कहकर संबोधित करते थे। वो मानते थे कि लड़कियों को सिर्फ रसोई के काम में नहीं लगा देना चाहिए बल्कि उन्हें आसपास का, देश की स्थिति का भी ज्ञान होना चाहिए। आगे देखिए प्रश्न तीन, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और ना अपने कानों पर। तो आपको बताना है वो कौन सी घटना थी जिसपे लेखिका को विश्वास नहीं हुआ था। याद है आपको बच्चों? अगर नहीं याद है तो मैं फिर से याद दिलाती हूँ आपको कैसे इसका उत्तर लिखना होगा। एक बार लेखिका के कॉलेज से उनकी प्रिंसिपल का पत्र आया था कि मन्नू के पिताजी आकर मिलें और बताएं कि इनकी गतिविधियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों ना की जाए। ठीक है, अब ऐसा जो पत्र पढ़ा तो उनके पिताजी बहुत गुस्से हो गए और गुस्से से ही वो कॉलेज में गए, हैं, गुस्सा हो गए, गुस्से में कॉलेज में गए और लेखिका इस बात से बहुत डर गई और वो पड़ोस के किसी मित्र के पास जाके, किसी के घर में जाके छुप गई थी। लेकिन जब उनके पिताजी कॉलेज में गए, पूरी बात सुनी, तो उन्हें पता चला कि मेरी बेटी का कोई अपराध नहीं, मेरी बेटी की तो कोई गलती है ही नहीं, और इससे उनके अपनी बेटी से सारी शिकायतें दूर हो गई। और वो जब घर आए तो वो बता रहे थे कि कैसे उन्हें अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था, कैसे वो उसकी गतिविधियों से प्रसन्न थे। और ये जब दृश्य देखा, पिताजी का बदला हुआ व्यवहार देखा, तो लेखिका को ना तो आंखों पर विश्वास हो रहा था और ना ही कानों पर भरोसा हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा था कि जब पिताजी कॉलेज से वापस घर आएंगे तो मुझे बहुत डांटेंगे, है ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पिताजी खुश थे, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, उन्होंने मेरी चीजों समझ में आई, उन्होंने मेरी बात को समझा और अब उन्हें मुझ पर गर्व भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। वैचारिक टकराहट यानी विचारों की टकराहट, विचारों का ना मिलना, उनमें आपस में टकराव होना, किस वजह से लेखिका और उनके पिता के जो विचार थे वो नहीं मिलते थे, ये आपको बताना है। तो आप लिखेंगे, लेखिका के जो पिता थे वो स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, उन्हें पढ़ाना चाहते थे, काफी कुछ जानकारी देना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो स्त्रियों का दायरा, महिलाओं का दायरा कहीं ना कहीं मानते थे कि चार दीवारी के अंदर ही है, जबकि लेखिका ऐसा नहीं मानती थी। वो बहुत ही खुले विचारों की स्त्री थी और वो पूरी दुनिया में महिलाओं का दायरा मानती थी। लेखिका के जो पिता थे वो चाहते थे कि लड़की की शादी जल्दी भी कर देनी चाहिए, है ना, यानी 16-17 की उम्र में लड़की की शादी कर देनी चाहिए, लेकिन लेखिका को लगता था कि किसी भी लड़की को अपनी जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए, अपने आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए, कुछ बन जाना चाहिए, कुछ हासिल कर लेना चाहिए, तब जाके शादी का विचार मन में लाना चाहिए, तब जाके शादी के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा, पिताजी जो थे उनके, वो ये चाहते थे कि लड़कियों को देश की स्थिति के बारे में, देश में क्या हो रहा है, क्या घटनाएं चल रही है, सारी बातें पता हो, लेकिन लड़कियों का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना, जुलूसों में जाना, रैलियों में रैलियां निकालना, है ना, चौराहों पे खड़े होकर भाषण देना, ये सब उनके पिताजी को पसंद नहीं था। जबकि लेखिका जो थी वो बहुत ही उत्साही लड़की थी, युवा होने के कारण उनमें जोश था, वो चाहती थी कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले, जुलूस निकाले, रैलियां निकाले, चौराहे पे खड़े होकर भाषण दे, उन्हें ये सब कुछ करना था, जो कि उनके पिताजी को पसंद नहीं था। और चौथा आप लिखेंगे, जो लेखिका के पिताजी थे वो उनकी माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, है ना, बहुत ही क्रोध करते थे, या अपना किसी भी बात की जो चिंता या टेंशन है, गुस्सा है, सब उनकी माँ पे निकाल देते थे, अपनी सारी फरमाइशें उनके सामने रखते थे, लेकिन लेखिका को स्त्री के प्रति ऐसा व्यवहार पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि स्त्री को आपको सम्मान देना चाहिए, और अगर आप सम्मान नहीं दे रहे हैं तो कम से कम स्त्री को आवाज उठानी चाहिए, जो कि उनकी माँ नहीं उठाती थी। दूसरा, शुरुआत में जो लेखिका ने चर्चा की थी कि जो उनके पिताजी थे वो गोरे रंग के प्रति आकर्षित रहते थे, काले रंग को लेके उनके मन में एक अच्छी भावना नहीं थी, इसी वजह से लेखिका जो कि काली थी, उनकी बहन गोरी थी, उनकी बहन को ज्यादा प्यार मिलता था, और इसी वजह से लेखिका का मन उदास रहता था, लेखिका में कहीं ना कहीं हीन भावना जन्म लेने लगी थी। ठीक है, तो इन सारे आधारों पर आप लिखेंगे कि इन सारे आधारों पर हम कह सकते हैं कि लेखिका और उनके पिताजी के बीच में वैचारिक टकराहट थी, मतभेद थे, उनके विचार आपस में नहीं मिलते थे। ठीक है, देखिए प्रश्न 5, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन का समय आपको बताना है, दृश्य वर्णित करना है और बताना है कि मन्नू भंडारी की उसमें क्या भूमिका रही। तो आप बताएंगे कि सन 1946 और 1947 में पूरे भारत देश में, हमारे पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ गया था, है ना, पूरे जोश में लोग इस आंदोलन में भाग ले रहे थे, हर तरफ कहीं हड़तालें होती थी, कहीं जुलूस निकाले जाते थे, कहीं प्रभात फेरियां निकाली जाती थी, रैलियां निकाली जाती थी, नारेबाजी होती रहती थी। तो ऐसी घटनाओं को लेकर जो लेखिका के पिताजी थे वो चाहते थे कि मेरी बेटी भी इन सारी बातों के बारे में जागरूक रहे, उसे इन सारी बातों के बारे में जानकारी रहे। तो इसी वजह से जब उनके पिता और उनके साथी मिलके कोई भी गोष्ठी करते थे, कुछ चर्चाएं करते थे, तो लेखिका को भी वहीं बैठा लेते थे, उन्हें देश में हो रही जो गतिविधियां थी उनकी जानकारी देते रहते थे। वहीं जो लेखिका की शिक्षिका थी शीला अग्रवाल, उन्होंने लेखिका को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए और प्रोत्साहित कर दिया, है ना। वो जोश से भर जाती थी अपनी शिक्षिका की बातें सुनकर, तो उसके बाद वो इस आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गई। जब हमारे देश में नियम कानून टूटने लगे, मर्यादाओं का उल्लंघन होने लगा, तब वो देश के लिए पूरे जोश से भाग लेती थी। फिर उन्होंने अपने पिताजी की नाराजगी का, उनके गुस्से का, इसका भी ख्याल नहीं किया, बस वो देश के लिए भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़ी। उनका एक युवा के तौर पर उनका जो जोश था, उनका जो उत्साह था, संगठन बनाने की क्षमता थी, विरोध करने का तरीका था, वो देखते ही बनता था। लोग उसके कायल हो जाते थे कि इतनी कम उम्र में ये लड़की कितनी मेहनत से, कितनी जोश से ये काम करती है। चौराहों पे खड़े होके वो भाषण देती थी, नारेबाजी करती थी, है ना, हड़तालें करते थे उनके, वो और उनकी सहेलियां मिलकर, बेझिझक तरीके से वो इस आंदोलन में भाग ले रही थी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो स्वाधीनता आंदोलन का माहौल था, उसमें लेखिका मन्नू भंडारी की भी एक सक्रिय भूमिका थी, उन्होंने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई। आगे देखिए रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न संख्या 6। लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चार दीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही हैं या बदल गई हैं? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि अब स्थितियां कैसी हैं, क्या लड़कियां अभी भी घर के बाहर ही अंदर ही खेलती हैं या बाहर जाके खेल सकती हैं? आपको अपने परिवेश यानी आपके आसपास कैसा माहौल है इस आधार पे बताना है। तो आप लिखेंगे कि अपने समय में जो लेखिका थी, है ना, उन्हें खेलने पढ़ने सबकी आजादी थी, लेकिन फिर भी एक सीमा तय थी कि यहीं तक खेलेंगी। जबकि आज स्थितियां काफी हद तक बदल गई हैं। आज लड़कियां एक शहर से दूसरे शहर भी जा सकती हैं, ना, पढ़ाई के लिए, खेलने के लिए जाती हैं, ऐसा नहीं कि अपने आसपास ही खेले। और यहाँ तक कि शहर तो छोटी बात हो गई, एक देश नहीं, वो तो दूसरे देश में भी जाती हैं, है ना, विदेशों में जाती हैं, अंतरिक्ष में जाती हैं, हर जगह लड़कियां जा रही हैं। लेकिन अभी भी कहीं कहीं स्थिति ऐसी है कि कुछ लोग महिलाओं की स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं है, जो ना तो महिलाओं को पढ़ाना चाहते हैं और ना ही उनके खेल कूद को सही समझते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपनी सोच बदली है, वो लड़कियों को शिक्षा के लिए, खेलने के लिए कहीं भी नहीं रोकते हैं, वो जहां चाहे वहां तक जा सकती हैं, दूसरे शहरों में, विदेशों में भी लड़कियां जा रही हैं, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी आज भारत की लड़कियां पहुंच चुकी हैं। ठीक है, प्रश्न 7 देखिए। मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं, इस बारे में अपने विचार लिखिए। तो आप क्या बताएंगे कि जो आज का मनुष्य है ना, वो आधुनिकता की दौड़ में अंधा होकर भाग रहा है, उसके जो संबंधों का क्षेत्र है सीमित हो गया है, छोटा हो गया है, वो बस खुद पे केंद्रित होकर रह रहा है, उसे अपने सगे संबंधियों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में पता नहीं होता, ये भी नहीं पता होता बड़े बड़े शहरों में तो कि हमारे बगल में, हमारे ऊपर नीचे वाले घर में कौन रह रहा है। इसीलिए आज हमारे समाज से जो पड़ोस कल्चर है ये लगभग लगभग खत्म होता जा रहा है। लोगों के पास समय नहीं है, इतना भी नहीं कि अपने पड़ोसियों से मिले, उनको जाने, उनसे बात करें, है ना। पहले का माहौल अच्छा था कि पड़ोसियों से हम मिलते थे, उनके सुख दुख बांट लेते थे, कुछ खाने पीने की चीजें आपस में साझा कर लेते थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम मिलके बातें कर रहे हैं, सुख दुख बांट रहे हैं, कहीं कहीं तो स्थिति इतनी खराब होती है कि आपको पड़ोसी का नाम भी नहीं पता होता है। तो इसीलिए ये बात काफी हद तक सही है कि महानगरों में जो पड़ोस कल्चर है वो लगभग लगभग खत्म हो चुका है। अगला देखिए प्रश्न 8। लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यासों की सूची बनाइए और उन उपन्यासों को अपने पुस्तकालय में खोजिए। तो जैसा कि पाठ पढ़ाते समय भी मैंने आपको बताया था कि ये जो उपन्यास लेखिका ने बताए, जैसे अज्ञेय जी का लिखा हुआ शेखर एक जीवनी, है ना, जैनेन्द्र जी की लिखी हुए उपन्यास और कहानी, ये सब आपको ढूंढने हैं पुस्तकालय में, और अगर मिल जाता है तो पढ़िए, नहीं मिल पाता है तो कोशिश कीजिए आप इंटरनेट से निकाल लें या किसी रिश्तेदार से पूछ लें, जहां आपको ये उपलब्ध हो वहां आप इन्हें जरूर पढ़िए, इससे आपकी जो सोच है साहित्य के प्रति उसमें विकास होगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न 9। आप भी अपने दैनिक अनुभवों को डायरी में लिखिए। तो ये प्रश्न दिया गया है ताकि आपके लिखने की जो कला है उसमें सुधार आए। आत्मकथा कैसे लिखते हैं ये सीखने के लिए आप एक डायरी बनाइए और दैनिक अनुभवों को, यानी डेली के क्या एक्सपीरियंस होते हैं, आज हमारे साथ क्या हुआ, मैं सुबह इतने बजे उठा या इतने बजे उठी, फिर मैं स्कूल गया, वहां मैं इनसे मिला, मुझे इनकी बातों ने ऐसे प्रभावित किया, घर आके मैंने ये काम किया, मैंने पढ़ाई के साथ साथ आज ये सीखा, ऐसे सारी बातें आप पूरे सुबह से लेकर रात तक की एक दिन की सब कुछ डायरी में नोट कीजिए और रोज कम से कम एक महीने तक ये काम कीजिए, फिर देखिए आपकी लेखन शैली में कैसे सुधार आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपकी रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न भी पूरे हो गए। अब हम आते हैं भाषा अध्ययन पे, और भाषा अध्ययन में आपको क्या करना होता है, इसमें व्याकरण संबंधी प्रश्न दिया गया होता है। तो यहाँ आपको एक ही प्रश्न दिया है, देखते हैं प्रश्न संख्या 10। इस आत्मकथ्य में पेज नंबर 101 पे आ जाइए, पेज नंबर 101 पे है ये भाषा अध्ययन। देखिए पहला प्रश्न, इस आत्मकथ्य में मुहावरों का प्रयोग करके लेखिका ने रचना को रोचक बनाया है, रेखांकित मुहावरों को ध्यान में रखकर कुछ और वाक्य बनाइए। तो लेखिका ने जो आत्मकथ्य लिखा है इसमें कई जगह पे मुहावरों का प्रयोग भी किया है जिससे कि भाषा मजेदार लगती है ना, पढ़ने में और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आपको चार वाक्य दिए गए हैं जिसमें आपको मुहावरे दिए गए हैं और इन मुहावरों से अब आपको एक अलग वाक्य बनाना है। ठीक है, तो पहला है, इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। ठीक है, यानी कि उनको शर्मिंदा किया। तो आप लिखेंगे, आज सही से कार्य ना करने पर शिक्षक ने मेरी लू उतारी। ठीक है, क्या वाक्य बनाएंगे, आज अच्छी तरह कार्य ना करने से शिक्षक ने मेरी लू उतारी। ठीक है, ऐसे आप ये वाक्य बना सकते हैं। दूसरा देखिए ख, वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। ठीक है, आग लगाना यानी किसी को भड़काना, किसी के झगड़े करवाना। ठीक है, तो आप आग लगाने के लिए एक वाक्य लिख सकते हैं, सोहन मेरे और मेरे मित्र के बीच में हमेशा आग लगाने का काम करता है। क्या वाक्य बनाएंगे, सोहन हमेशा मेरे और मेरे मित्रों के बीच आग लगाने का काम करता है। आगे समझ में, फिर से रिपीट कर रही हूँ, सोहन हमेशा मेरे और मेरे मित्रों के बीच आग लगाने का काम करता है। ठीक है, देखिए तीसरा वाक्य, बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। ठीक है, यानी कि बदनामी करें, हमारी बेइज्जती करें, थू थू करना यानी बदनामी होना। ठीक है, तो आप लिखेंगे, मीना अपनी माँ से इतनी जोर से चिल्ला चिल्ला कर लड़ती है कि पड़ोसी उस पर थू थू करते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ वाक्य, मीना अपनी माँ से इतनी जोर जोर से चिल्ला कर लड़ती है कि लोग उस पर थू थू करते हैं। ठीक है, अगला देखिए चौथा वाक्य, पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। आग बबूला होना यानी बहुत क्रोधित हो जाना, बहुत गुस्सा आ जाना। तो इसके वाक्य में आप लिख सकते हैं, स्कूल से मेरी शिकायत आने पर पिताजी आग बबूला हो गए। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से कहीं नोट कर लीजिए, स्कूल से मेरी शिकायत आने पर पिताजी आग बबूला हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपका भाषा अध्ययन भी पूरा होता है। आगे आइए, देखिए पाठ्येतर सक्रियता में 3 बिंदु दिए गए हैं, क्या क्या बातें हैं। पहला देखिए, इस आत्मकथ्य से हमें यह जानकारी मिलती है कि कैसे लेखिका का परिचय साहित्य की अच्छी पुस्तकों से हुआ। आप इस जानकारी का लाभ उठाते हुए अच्छी साहित्यिक पुस्तकें पढ़ने का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। कौन जानता है कि आप में से ही कोई अच्छा पाठक बनने के साथ साथ अच्छा रचनाकार भी बन जाए। तो वो क्या बता रहे हैं, इस आत्मकथ्य में लेखिका ने लिखा है ना कि कैसे पढ़ने के प्रति उनकी रुचि जागृत हुई, साहित्य से उनका परिचय किसने करवाया, उनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल ने, और उन्होंने बताया कि कौन सी पुस्तकें उन्हें पढ़नी चाहिए, अच्छी अच्छी पुस्तकें वे चुनकर देती थी। ऐसे ही आपको भी इसका लाभ उठाना चाहिए, जो सूची यहाँ पे लेखिका ने दी है उन पुस्तकों को पढ़ें, साथ ही और भी अपने शिक्षकों से जानकारी प्राप्त करें कि साहित्य की कौन सी अच्छी पुस्तकें हैं वो पढ़ें। इससे क्या होगा, आप में से कोई अच्छा पाठक है ना, यानी अच्छे तरीके से पढ़ना समझना चीज, उसके साथ अच्छा रचनाकार भी बन सकता है, यानी हो सकता है आप में से भी कोई लेखक या लेखिका बन जाए, जिसका लिखने में इंटरेस्ट हो, लिखने में रुचि जिसकी विकसित हो जाए और वो भी कुछ अच्छी रचनाएं करे और कल को वो भी प्रसिद्ध हो जाए, आप भी प्रसिद्ध हो जाए और आपका भी नाम पूरे देश में हो जाए। अगला देखिए, लेखिका के बचपन के खेलों में लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई और काली चीलो आदि शामिल थे। क्या आप भी यह खेल खेलते हैं? आपके परिवेश में इन खेलों के लिए कौन से शब्द प्रचलन में हैं? इनके अतिरिक्त आप जो खेल खेलते हैं उन पर चर्चा कीजिए। तो आपको लिखना होगा कि हाँ, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, स्टेपू जैसे खेल कहीं ना कहीं आज भी हम खेलते हैं, है ना। ये खेल छुपन छुपाई हो गया, पकड़म पकड़ाई हो गया, लंगड़ी टांग हो गया, ऐसे खेल आज भी खेलते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम और भी कई तरीके के खेल खेलते हैं, है ना। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, हम बास्केटबॉल खेलते हैं, हम कंप्यूटर पे गेम्स खेलते हैं। अब चीजें जैसे जैसे बदली हैं तो खेलों के तरीके भी बदल गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पुराने खेल हैं वो भी हमारे साथ जिंदा है ना, ये भी हम खेलते हैं। और अगर इन खेलों को आपके यहाँ कुछ और कहा जाता है तो आप वो भी यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी रही है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और उनमें से किसी एक पर प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। तो आपको बताना है कि स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। किसी भी एक महिला पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। या तो आप चार्ट पे बना सकते हैं, चार्ट पेपर पे, या फिर आप फाइल में बना सकते हैं। ये आपका प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है, आपको जरूर करना है, ठीक है। क्या करेंगे, जैसे उदाहरण के लिए लक्ष्मी बाई ले लेते हैं, ठीक है। तो लक्ष्मी बाई का एक चित्र चिपकाएंगे, उनके बारे में लिखेंगे, उनकी जानकारी, उनका नाम, पिता का नाम, उनके परिवार में कौन कौन था, शादी कब हुई, कहाँ तक पढ़ी, वास्तविक नाम क्या था, ये सारी बातें, उनकी जानकारी, उनका परिचय आपको लिखना है। और फिर आपको पढ़ना है उनके बारे में और ये लिखना है कि उनकी क्या भूमिका रही है ना, उन्होंने कैसे इस आंदोलन में भाग लिया, देश को आजादी दिलाने के लिए क्या क्या किया, क्या गतिविधियां रही, उनका जीवन कैसा रहा और देश के लिए ही कैसे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, ये सारी बातें आपको उस फाइल में या उस चार्ट पेपर में लिखनी होगी, ठीक है। ऐसे करके आपको एक अच्छा सा प्रोजेक्ट तैयार करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया, आपको 3 दिन में ये पूरा करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शब्द संपदा, यानी पाठ में जो कठिन शब्द आए होंगे जिनके अर्थ आपको समझने में मुश्किल हुई होगी, उसके सरल शब्द, उसके सरल अर्थ यहाँ पे बताए गए हैं आपके लिए, एक बार पढ़ देती हूँ, मेरे साथ साथ पढ़िएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला शब्द है अहमवादी, अहमवादी यानी घमंडी, जिसे अहंकार हो। भग्नावशेष, खंडर, टूटे फूटे हिस्से। विस्फारित यानी और अधिक फैलना, बढ़ाना। आक्रांत यानी कष्टग्रस्त। निषिद्ध, जिस पर रोक लगाई गई हो। वर्चस्व यानी दबदबा। राजेंद्र, यहाँ हिंदी के प्रमुख कथाकार एवं हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव के बारे में कहा गया है, ठीक है। जो लेखिका ने एक किस्सा बताया कि राजेंद्र से शादी होने तक, यानी राजेंद्र से जब शादी हुई तो उनके पिताजी तैयार नहीं थे, लेकिन लेखिका की इच्छा थी शादी की, इसलिए उन्होंने जैसे तैसे पिताजी को समझा के राजेंद्र से शादी की। तो राजेंद्र कौन है, एक हिंदी के बहुत ही प्रमुख कथाकार हैं और हंस पत्रिका के ये संपादक भी रह चुके हैं, उन्हीं के बारे में बताया है जिनकी मन्नु भंडारी जी से शादी हुई है। तो ये मन्नु भंडारी जी के पति हैं, ठीक है। महाभोज, महाभोज का नाम भी आया है कि महाभोज में लेखिका ने लिखा है कि मैं अक्सर अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में आसपास के जो लोग देखती हूँ, जिन लोगों से मिलती हूँ, जो मेरे मोहल्ले में जो लोग थे, वही कहीं ना कहीं मेरी कहानियों में किरदार बन के आ जाते हैं, जैसे कि महाभोज में हुआ था। अब महाभोज क्या है, एक बहुत ही चर्चित उपन्यास है मन्नू भंडारी जी का, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है जिसके दास साहब प्रमुख पात्र हैं। और यही दास साहब, वो क्या कहती हैं, उनके मोहल्ले में एक व्यक्ति थे जिनको देखकर उनके दिमाग में ये किरदार अपने आप सहज रूप से आ गया, है ना। उसके लिए उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, अपने आप ही वो आ गया और इसी वजह से उसका व्यवहार वो इतनी अच्छी तरीके से बता पाई। अब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 102। ठीक है, पेज नंबर 102 पे देखिए, यहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है, अतिरिक्त जानकारी। नमूने के तौर पर यहाँ 9 वर्षीय शिवांग की डायरी का एक पन्ना दिया जा रहा है। ठीक है, ये डायरी का पन्ना है कि कैसे डायरी लिखी है उस बच्चे ने। आप भी चाहें तो इससे अंदाजा लगा के डायरी अपनी शुरू कर सकते हैं लिखना, जैसा कि आपको प्रश्न उत्तर में भी बताया गया था कि एक डायरी आपको लेखन शुरू करना है 30 मार्च 2001 शुक्रवार। ठीक है, पहले डेट और दिन क्या है वो लिखा जाता है। आज सुबह पापा ने जल्दी से मुझे उठाया और कहा, देखो देखो बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, बहुत ठंड पड़ रही है। फिर मैं जल्दी से उठा और पापा से कहा, दीदी को भी उठाओ। फिर हमने देखा कि हमारे घर के सामने वाले ग्राउंड में हरी हरी घास पे सफेद सफेद ओले गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी ने चमेली के फूल गिरा रखे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, ओले पड़ रहे थे, बारिश हो रही थी, चिड़िया भाग रही थी, कौवे परेशान थे, पेड़ कांप रहे थे, बिजली चमक रही थी और बादल डरा रहे थे। एक चिड़िया हमारी खिड़की पर डरी डरी बैठी थी, बहुत देर तक बैठी रही, फिर उड़ गई। अभी तक कोई बच्चा खेलने नहीं निकला, इसीलिए मैं आज जल्दी डायरी लिख रहा हूँ। सुबह के 10 बजे हैं, मैं अपना सीरियल देखने जा रहा हूँ। आज मेरा न्यू इंक पेन और पेंसिल बॉक्स आया। आज दोपहर को धूप निकली, फिर हम खेलने निकले। आजकल हम लोग मिट्टी के गोले बना के सुखा देते हैं, फिर हम उनके ऊपर पेंटिंग करते हैं, उसके बाद फिर उनसे खेलते हैं। ठीक है, तो ये एक 9 वर्ष का बच्चा है, 9 साल के बच्चे की डायरी है कि उसने अपने दिन की गतिविधियों को कैसे इसमें अच्छे से बताया है कि उसने क्या क्या किया पूरे दिन। ठीक है, अब आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया मिल गया होगा, लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप भी अपनी डायरी लिखेंगे, डेट लिखेंगे, दिन लिखेंगे, ताकि आपको याद रहे कि किस दिन आपने क्या किया था, और फिर उस दिन पूरे दिन के बारे में लिखेंगे कि कैसे सुबह हुई, कैसे दोपहर में क्या किया, शाम को क्या किया, और कैसे शाम तक आपने अपना पूरा दिन बिताया। ऐसे जब आप 1 महीने तक लिख लेंगे और उसके बाद दोबारा उस डायरी को पढ़ेंगे तो देखिए आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, है ना। एक तो आपके लिखने की कला सुधर जाएगी, ऊपर से आपको याद आएगा, अच्छा मेरे साथ उस दिन ये हुआ था, मैंने ये भी किया था, मैंने ये भी किया था, अच्छा तो मुझे ये जो चीज मिली, ये जो गिफ्ट मिला, ये इस दिन मिला था। ऐसे आपको पढ़ के बहुत ही अच्छा लगेगा। अगला देखिए क्या दिया है, जानिए लंगड़ी की कुश्ती कैसे खेली जाती है। अब ये एक लंगड़ी की कुश्ती खेल है, वो आपको बता रहे हैं कि कैसे खेला जाता है। एक स्थान में बीच की लाइन के बराबर फासले पर 2 लाइनें खींची जाती हैं। 2 खिलाड़ी बीच की लाइन पर आकर लंगड़ी बांधकर अपने मुकाबले वाले को अपनी अपनी लाइन पर खींच ले जाने की कोशिश करते हैं। जिसकी लंगड़ी टूट जाती है अथवा जो खिंच जाता है उसकी हार होती है। यह खेल टोलियों में भी खेला जाता है। दिए हुए समय के अंदर जिस टोली के अधिक बच्चे लंगड़ी तोड़ देते हैं अथवा खिंच जाते हैं उस टोली की हार होती है। ठीक है, 2 समूह बना लिए जाते हैं और फिर एक एक बच्चे आमने सामने से आते हैं और उन्हें अपनी टीम की तरफ, अपनी लाइन की तरफ खींच के ले जाना होता है। अगर आप खींचने में सफल हो गए तो आप जीत गए, लेकिन अगर आपकी लंगड़ी बीच में टूट जाती है तो आप हार जाएंगे। इस तरीके से ये खेल खेले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने मन्नू भंडारी जी के जीवन के बारे में जाना और मन्नू भंडारी की लिखी हुई आत्मकथ्य एक कहानी है भी यहाँ पे पूरी हो गई। अब हम मिलते हैं अगले ऑडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।